कैसे इसराइल ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा चुराया और अमेरिका ने इसे छिपाने में कैसे मदद की। इसराइल का परमाणु हथियारों वाले देश के रूप में उभरना वैज्ञानिक नवाचार की जीत नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित चोरी का कार्य था, विशेष रूप से 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका से 100-300 किलोग्राम हथियार ग्रेड उच्च समृद्ध यूरेनियम एचयू का हस्तांतरण। न्यूमेक मामला इतिहास में परमाणु चोरी का सबसे गंभीर मामला माना जाता है। 1967 के यूएसएस लिबर्टी हमले की तरह, जहां स्पष्ट सबूतों ने इसराइल द्वारा एक अमेरिकी जासूसी जहाज पर जानबूझकर हमले की ओर इशारा किया, अमेरिकी परमाणु सामग्री की चोरी को रणनीतिक इनकार, राजनीतिक दबाव और राजनयिक उन्मुक्ति की परतों के नीचे दबा दिया गया है। यह निबंध खुलासा करता है कि इसराइल ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को संचालित करने वाला यूरेनियम कैसे चुराया, कैसे इस सामग्री को बिना पकड़े तस्करी की गई और कैसे यह अपने परमाणु स्थिति के बारे में झूठ बोलना जारी रखता है, अमेरिका की मिलीभगत और एक विदेश नीति सिद्धांत के समर्थन से जो जवाबदेही से ऊपर चुप्पी को प्राथमिकता देता है। न्यूमेक मामला, अमेरिका का यूरेनियम, इसराइल का बम। पेंसिल्वेनिया के अपोलो में न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन न्यूमेक का मामला लंबे समय से इसराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का मूल माना जाता है। 1957 और 1970 के दशक के मध्य के बीच इस सुविधा से 200 से 600 पाउंड 90-270 किलोग्राम हो गायब हो गया। न्यूमेक के अध्यक्ष सालमन शापिरो के इसराइली खुफिया विभाग के साथ घनिष्ठ संबंध थे। 1968 में इसराइली एजेंटों, जिनमें रफी एटान शामिल थे, जो बाद में जोनाथन पॉलट की जासूसी ऑपरेशन को संभालने के लिए प्रसिद्ध हुए, ने न्यूमेक का दौरा किया। उस समय अमेरिकी परमाणु हथियार डिजाइन की जानकारी से लैस एटान यूरेनियम के हस्तांतरण को समन्वय करने के लिए आदर्श स्थिति में थे। सीआईए की गैर वर्गीकृत मूल्यांकन और 2010 की जीएओ रिपोर्ट ने सामग्री के गायब होने की पुष्टि की, जो दृढ़ता से सुझाव देती है कि यह इसराइल के डिमोना रिएक्टर में पहुंच गया, जहां इसने देश के हथियार कार्यक्रम को शुरू किया। 1967 तक इसराइल के पास कम से कम दो परमाणु हथियार थे, जिनका उपयोग 6 दिवसीय युद्ध के दौरान अरब हस्तक्षेप को रोकने के लिए किया गया। यह सब अमेरिकी यूरेनियम के बिना संभव नहीं था, जो सबके सामने चुराया गया था। यूरेनियम की तस्करी एक। 1960 और 1970 के दशक में हो की तस्करी करना लोगों की कल्पना से कहीं आसान था। यूरेनियम 235 अपनी लंबी अर्धायु 704 मिलियन वर्ष के कारण बहुत कम स्तर की गामा विकिरण उत्सर्जित करता है। 20 किलोग्राम का हो नमूना यदि यूरेनियम डाइऑक्साइड O2 के रूप में ले जाया जाता है तो लगभग 1.49 × 107 bq गामा गतिविधि उत्पन्न करता है, जो उचित ढाल के साथ पृष्ठभूमि विकिरण की तुलना में नगण्य है। घातीय क्षीणन के नियमों का उपयोग करके I/I0 = E^μx जहां म्यू 1.64 cm-superscript 1 और x equals 18.2 cm, इससे 10-superscript 1 क्यूब का क्षीणन कारक प्राप्त होता है। यह 1.49 × 107 bq को 1.49 becquerels प्रभावी तक कम कर देता है। 10 सेमी पर विकिरण खुराक दर 0.000001 sv/h है, जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि खुराक 0.000274 mSv/h का केवल 3.65% है। दूसरे शब्दों में, एक कुरियर न्यूयॉर्क से तेल अवीव तक 20 किलोग्राम के साथ एक सूटकेस में उड़ान भर सकता था, पर कभी भी अलार्म नहीं बजता, खासकर उस युग में जब विकिरण डिटेक्टर नहीं थे और कार्गो की जाँच न्यूनतम थी। समुद्री शिपमेंट या राजनयिक थैले और भी कम पता लगाने योग्य होते। कई छोटे शिपमेंट आसानी से महीनों में पूरी चुराई गई मात्रा को स्थानांतरित कर सकते थे। जानबूझकर अस्पष्टता, धोखे की नीति। इसराइल ने कभी भी परमाणु हथियारों के स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया, बल्कि जानबूझकर अस्पष्टता की नीति का पालन किया। यह रणनीतिक अपारदर्शिता नहीं है, यह सुनियोजित चोरी है। साइमिंगटन संशोधन 22 U.S.C. § 2799(a)(1) किसी भी देश को परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी में व्यापार करने से रोकता है जो परमाणु अप्रसार संधि NPT से बाहर है। इसराइल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। सैद्धांतिक रूप से यह इसे अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए अयोग्य बनाना चाहिए। व्यवहार में इसराइल को प्रतिवर्ष $3.8 billion की अमेरिकी सहायता प्राप्त होती है। कानूनी आवश्यकता को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगातार राष्ट्रपति छूट के माध्यम से दरकिनार किया जाता है। जिस तरह अमेरिकी सरकार ने यूएसएस लिबर्टी हमले को वर्गीकृत किया, NSA ट्रांसक्रिप्ट और जीवित बचे लोगों के खातों के बावजूद जो साबित करते हैं कि हमला जानबूझकर था, 1970 के दशक में अमेरिकी एजेंसियों ने न्यूमेक की जाँच को दबा दिया। परमाणु ऊर्जा आयोग FBI और CIA सभी पर दबाव डाला गया कि वे इसराइल की भागीदारी को कम करें। एटान ने इसराइली खुफिया में वरिष्ठ पदों पर काम करना जारी रखा, कभी भी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पूछताछ नहीं की गई। यूएसएस लिबर्टी और न्यूमेक उन्मुक्ति के समानांतर मामले। 8 जून 1967 को 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इसराइली लड़ाकू जेट और टॉपीडो नौकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय जल में स्पष्ट रूप से चिन्हित अमेरिकी खुफिया जहाज यूएसएस लिबर्टी पर हमला किया। 34 अमेरिकी मारे गए। जीवित बचे लोगों, अवरोधित संचार और कार्रवाई के बाद की रिपोर्टें पुष्टि करती हैं कि इसराइल को पता था कि वह एक अमेरिकी जहाज पर हमला कर रहा था। फिर भी अमेरिका इसराइल गठबंधन को बनाए रखने के लिए इस घटना को दुखद दुर्घटना घोषित किया गया और जल्दी से दबा दिया गया। न्यूमेक ने उसी स्क्रिप्ट का पालन किया, स्पष्ट परिस्थितिजन्य सबूत, इसराइल से इनकार, अमेरिकी सरकार से चुप्पी और कोई जवाबदेही नहीं। दोनों मामलों में रणनीतिक साझेदारी के लिए सच्चाई का बलिदान दिया गया। इनकार और वैश्विक परिणाम। इसराइल का अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को स्वीकार करने से इनकार करने के व्यापक परिणाम हैं। यह मध्य पूर्व को अस्थिर करता है, जिससे ईरान जैसे विरोधियों को अपने स्वयं के निवारक साधन खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह इसराइल को अप्रसार नीति को निर्देशित करने की अनुमति देता है, जबकि यह पूरी तरह से एनपीटी ढांचे के बाहर काम करता है। इसके अलावा इसराइल की परमाणु नीति की आलोचना को अक्सर ईरा परिभाषाओं के तहत यहूदी विरोधी के रूप में खारिज कर दिया जाता है, जिससे वैध जांच और व्हिसलब्लोइंग को ठंडा कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप एक परमाणु सशस्त्र राज्य बिना निरीक्षण, बिना जवाबदेही और पूर्ण राजनयिक उन्मुक्ति के साथ काम करता है। निष्कर्ष, वह अपराध जो दंडित नहीं हुआ और जिसने एक क्षेत्र को आकार दिया। 1 जुलाई 2025 तक अमेरिकी यूरेनियम की चोरी और न्यूमेक मामले का ढकछिप अभी भी अनसुलझा है। यूएसएस लिबर्टी पर हमला भी ऐसा ही है। दोनों एक गहरी सच्चाई को दर्शाते हैं, जब इसराइल के कार्य अमेरिकी कानून या मूल्यों से टकराते हैं तो वॉशिंगटन अक्सर न्याय के बजाय चुप्पी चुनता है। यूरेनियम की चोरी न केवल संभव थी, इसे अंजाम दिया गया और इसे नजरअंदाज कर दिया गया। विकिरण इतना कमजोर था कि इसे पकड़ा नहीं जा सका और टकराव की राजनीतिक लागत बहुत अधिक थी। इसराइल ने चुराए गए सामग्री पर एक गुप्त जखीरा बनाया और दुनिया, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ने दूसरी ओर देखने का फैसला किया। यह चुप्पी केवल मिलीभगत नहीं है, यह नीति है।